हम पिछले दिनों में प्रेरित काम की सीरीज में चल रहे हैं, बार 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 हम उसी बात को दोहराते हैं और प्रेरित काम की पुस्तक जो है एक ही बात को बार बार स्मरण लाती है, पवित्र आत्मा का काम, परमेश्वर के आत्मा का काम, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम। पिछली बार भी मैंने बोला था कि ये पुस्तक का जो सही टाइटल है वो ये है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कार्य प्रेरितों के द्वारा। और वो क्या मुख्य कार्य है? सुसमाचार का सुनाया जाना और सुसमाचार के साथ परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना करना, जो परमेश्वर का राज है, परमेश्वर का राज है जिसकी योजना परमेश्वर ने आरंभ से की थी, आरंभ से की थी। अदन की वाटिका में पाप आया और पाप के बाद हम जानते हैं क्या सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। और लेकिन परमेश्वर ने उसी समय में उसके हृदय में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। समय पति उसके दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर ने कहा कि आदम हवा से कहा, तूने क्या किया? पाप आया तो उसके हृदय में पीड़ा उत्पन्न हुई। लेकिन उस समय परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि पुनः वो अपने उस कार्य को स्थापित करेगा और पुनः एक नई रीति से वो अपने परिवार को या अपने राज्य को बनाएगा। और उसकी राज इस वर्तमान में कलीसिया है। और कलीसिया को समझना, कलीसिया को पहचाना, कलीसिया कार्य करना, रूप में कार्य करना बहुत आशीष की बात है। कलीसिया लोग हैं, हम आपस में, परमेश्वर का मन आपस में एक परिवार है। परिवार को संभालना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हर एक की जिम्मेदारी होती है। केवल मुखिया की जिम्मेदारी नहीं होती लेकिन परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी होती है। अगर मुखिया सब कुछ कर रहा है, घर में पिता सब कुछ कर रहा है, माता पिता सब कुछ कर रहे हैं, बच्चे अनज्ञाकारी हैं तो परिवार तहस नहस होगा। अगर बच्चे अच्छे हैं, माता पिता ठीक नहीं है तो वह तहस। तो ये है और उसकी चित्रण बार बार आते। और सच में परमेश्वर ने अपने आत्मा द्वारा, प्रेतों के द्वारा किस प्रकार से सुसमाचार को फैलाया और हम देख रहे हैं। और हमने देखा था कि किस रीति पौलुस तीन मिशनरी यात्रा करता है, सुसमाचार प्रचार की यात्रा, और सुसमाचार प्रचार की यात्रा में कैसे परमेश्वर की कलीसिया का आरंभ हो रहा है। क्यों आरंभ हो रहा है? क्योंकि एक बात प्रभु ने अपने जाने से पहले कही थी। और जो मत्तियुस के 28 अध्याय में जो जाने से पहले उसने अपने शिष्य से कहा था, जाओ जगत के जाति के जाति जाति के लोगों सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सिखाओ और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। तो ये सीखने की प्रतिक्रिया केवल बपतिस्मा लेने के बाद खत्म नहीं होती, वो और आगे बढ़ती रहती है। बपतिस्मा तो एक पहला कदम, पहली सीढ़ी चढ़ना है, विश्वास है, विश्वास है बपतिस्मा है, और फिर उसके बाद कहता तुम उसको सिखाओ। और उसी को परमेश्वर ने बाद में आके दोबारा दूसरी तरह जो प्रेरित काम उसके एक अध्याय में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हर जाति के लोगों में सुसमाचार पहुंच सके, तक सुसमाचार प्रचार किया जा सके। परमेश्वर की इच्छा थी और आरंभ से न केवल इच्छा थी लेकिन परमेश्वर की सनातन योजना थी और उसके अनुसार परमेश्वर अपने कार्य कर रहा है। और तब हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने धीरे 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 करके उस कार्य को बढ़ाया है और कलीसिया स्थापित है। और जो आज हम यहाँ पर हैं वो उसी कार्य का आरंभ का हम एक हिस्सा है, उसी कार्य का। और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे अपने दुल्हन को लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए, ये कार्य बढ़ता चलाएगा। और सच में परमेश्वर की जो कलीसिया है वो अद्भुत कलीसिया है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को इज्जत जरूर है, बिना सुसमाचार के, सच्चे सुसमाचार के कलीसिया की स्थापना नहीं है बिना सुसमाचार के। लेकिन जब हम इस पूरे संसार को देखते हैं, संसार की अलग भाषाओं को देखते हैं, अलग जाति को देखते हैं, अलग कुल को देखते हैं, अलग रंग को देखते हैं, अलग पृष्ठभूमि को देखते हैं, अलग अलग को देखते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ को अलग अलग को किस प्रकार से अपने राज का वारिस बना करके अपने दुल्हन के रूप में तैयार कर कलीसिया बना रहा है। और जब हम जाते हैं इधर, हम हर जगह कलीसिया की आराधना के तरीके को अलग देखते हैं, उनके वर्शिप के तरीके को। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए उनकी आराधना करने तरीका अलग है, नेपाल में चले जाइए उनके आराधना तरीका अलग है। कई लोग बड़े आनंद के साथ डांस करते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत सारी चीजें कई तरह। लेकिन परमेश्वर ने इस सर्व कलीसिया को अनेक रीति से डाला है के रूप को। पर सबसे मुख्य बात जो है, जो आज हम देखना चाहते हैं कि सुसमाचार, परमेश्वर का वचन, वो प्रथम है और वो जीवनों को नियंत्रित करना है। केवल हमारी भावनाएं नहीं है, केवल हमारी इच्छाएं नहीं है, केवल हमारे अपने सोच और अपने तरीके नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार वो हमारे जीवन का मुख्य है। और वही हम देख रहे हैं प्रेरित काम में कि किस प्रकार से सुसमाचार फैलता चला जा रहा है। विनोद हो रहा है, कठिनाई हो रही है, शत्रुता है, सब कुछ है, परंतु परमेश्वर का कार्य बढ़ता चला जा रहा है। और पिछले हफ्ते में हमने प्रेरित काम उसके 21 अध्याय के कुछ पदों को देखा था, प्रेरित काम उसके 21 अध्याय को, और किस प्रकार से पौलुस अब यरूशलेम को वापस जाने की लालसा रखता है। और हमने देखा था कि क्यों उसके हृदय में यरूशलेम बसा हुआ है। यरूशलेम उसके हृदय में इसलिए बसा हुआ है, उस स्थान पर रहकर उसने न केवल बौद्धिक ज्ञान को प्राप्त किया था, न केवल उसने व्यवस्था के ज्ञान को प्राप्त किया था। मैंने पिछली बार हमने बहुत डिटेल में बताया था कि गमलियेल के चरणों में रहकर के उसने 3 साल व्यवस्था को सीखा था, किस रीति से यरूशलेम में रहकर उसने बहुत जोश में होकर के वो व्यवस्था का पालन करते हुए मसीह को सलाह भी दाता, सोचा था मैं ठीक कर रहा हूँ। लेकिन यही वो स्थान था जहाँ परमेश्वर ने उसको अपना दर्शन भी दिया, और फिर वो जाता है 3 साल के लिए, फिर वापस आता है। जब वापस आता है प्रेरित काम 9 अध्याय में, तब यही यरूशलेम में उसको विश्वास में संभाला गया। वो कलीसिया पहले डर रही थी, लेकिन उसी कलीसिया ने उसको संभाला और उसको तैयार किया और वो सेवा में आगे बढ़ता। अब वो जब सुसमाचार प्रचार करके जगह जगह जा रहा है, तो उसका इच्छा है कि वो पुराना वापस आए और यरूशलेम में आकर के, यद्यपि यरूशलेम उसके लिए कठिन स्थान बना, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसी स्थान पर आकर के वो परमेश्वर के वचन को, जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है, वो सुना सके। सो इस अध्याय में हमने पिछली बार 17 पद तक उन बातों को देखा था कि किस तरीके से एक खास बातें देखी थी कि लोग कह रहे हैं कि तुम यरूशलेम मत जाओ, लोग कह रहे हैं कि हमसे पवित्र आत्मा करो तुम यरूशलेम, लेकिन परमेश्वर ने पहले पौलुस से कहा था तुझे यरूशलेम जाना होगा। 19 अध्याय में 20 अध्याय में पहले वर्णन करता है। तो इसके बाद अब अगबुस जो है, अगबुस जो नबी है, वो भी इस बात की भविष्यवाणी करता है कि तुझे जाना होगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग सब अपने आप में इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि अरे अगर पौलुस चला जाएगा तो शायद हमारे साथ क्या होगा, इसलिए पौलुस रहेगा ठीक है, उसके साथ साथ हम काम भी करेंगे, उसके साथ साथ हमें बचाव भी होगा, बहुत सारी। तो अपने से अलग उसको नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा होता है, कई बार हम किसी व्यक्ति के ऊपर इतना निर्भर होते हैं कि हम उससे अपने आप को अलग नहीं करना चाहते, और हमें देखना है। और ये यही स्थिति हम इसमें देखते हैं, समय होता और विस्तार से जा सकते, लेकिन फिर अब आगे चलते हैं। तो 17 पद से अब पौलुस यरूशलेम में पहुंच गया, लेकिन 17 पद से आगे के 21 अध्याय के 23 अध्याय तक हम लगभग 7 ऐसी बातों को देखते हैं जिनको क्रम से हम आगे देखना चाहेंगे। पहले पद से लेकर 16 पद तक हम पिछली बार देख चुके हैं पौलुस का यरूशलेम में आना। अब वो यरूशलेम में 17 पद से लेकर 26 पद तक यरूशलेम में पहुंच जाता है। अब यरूशलेम में पहुंच करके वहां पर उसकी याकूब से मुलाकात होती है। याकूब कौन है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, याकूब कौन, किस याकूब से मुलाकात होती है। एक याकूब प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, एक याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई है, लेकिन यहाँ पर ये कौन सा याकूब है, अभी हम देखेंगे। फिर याकूब से मुलाकात होती है, क्या चीज वहां पर उसके से उसको सामना करना पड़ता है, वार्तालाप करनी पड़ती है। 17 पद से लेकर 26 पद तक, फिर 27 पद से लेकर के 40 पद तक अब वो सुसमाचार के कारण या उसके जो कुछ भी उसका विश्वास था, उसका मत था, उसके कारण किस प्रकार से उसको विरोध का सामना करना पड़ा, लोग उस पर किस प्रकार से दोष लगा रहे सुसमाचार के कारण। और लेकिन फिर वहां पर उसका पहला बचाव, ये सब कुछ होने बाद भी पौलुस को किस प्रकार से वहां पर यरूशलेम में लोग बचा लेते हैं जब इसको आक्रमण किया जा रहा है, हम देखेंगे अभी। तब तो आगे चल करके 22 अध्याय के 1 पद से लेकर 21 पद तक पौलुस अब भीड़ में उपदेश देता है, वो उपदेश एक साक्षी के रूप में है, जो 9 अध्याय में उसको उसके साथ परमेश्वर ने किया है, उस 9 अध्याय की घटना का वर्णन साक्षी के रूप में वो 22 अध्याय में वर्णन करा। 22 अध्याय में, 26 अध्याय में, फिर उसका गलतियों में वर्णन करता है, क्रोध में वर्णन करता है। तो अगले संडे को जब हम आएंगे तो हम 22 अध्याय में कैसे हमें साक्षी देनी चाहिए उस विषय को हम देखेंगे, पौलुस के जीवन से कैसे हम प्रभु की साक्षी दे सकते हैं, कैसे पौलुस ने बहुत अच्छा उदाहरण मेरे और आपके लिए रखा है जो 22 अध्याय में जिसका विवरण हम देखते हैं। तब उसके बाद 22 अध्याय के 22 पद से लेकर के 29 पद तक फिर से हम एक और बार विरोध देखते हैं, और वहां पर दूसरी बार पौलुस का बचाव क्या आता है। तो 4 बचाव के बारे में देखते हैं, तीसरी बचाव 30 अध्याय से 23, 22 अध्याय के 30 पद से लेकर के 23 अध्याय के 11 पद तक तीसरा बचाव देते हैं उस महासभा के बीच में। फिर अंतिम जो बात देखते हैं, अब पौलुस की हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन किस प्रकार से उसको मारा जाना चाहिए,
23 अध्याय के 12 पद से लेकर आगे वर्णन है, लेकिन फिर भी चौथी बार उसका बचाव था। तो चार बार किस प्रकार से उसके प्राणों के लोग जो है, उसकी कलीसिया के लोग, उसके विश्वासी या हाकिम खुद उसका बचाव करते, क्योंकि हाकिम उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं देखने पाते। तो हम जब क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इन बातों को देखेंगे, लेकिन आज जो मैं विशेष रूप से आपका ध्यान लाना चाहता हूँ 17 पद से। अब 17 पद में जब वो यहाँ पर लिखा है 17 पद से 17 और 18 पद, जब हम यरूशलेम पहुंचे, हम शब्द है यहाँ पर लूका लिख रहा है, लूका अपने साथ पौलुस को भी शामिल कर रहा है। कहीं कहीं लूका वे शब्द इस्तेमाल करता है, जब वो शब्द इस्तेमाल करता है तो लूका वहां पर नहीं है, लेकिन जब हम शब्द इस्तेमाल करता है, लूका लेखक है, इसको वर्णन कर रहा है प्रेरित काम की पुस्तक में, तो जब हम कर रहा है तो इसका मतलब वो भी इसमें शामिल है। जब हम वहां पहुंचे तो भाइयों ने हमें बड़े आनंद के साथ ग्रहण किया। तब दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन उपस्थित थे। अब यहां पर याकूब, अब ये याकूब कौन याकूब है? ये याकूब जिसने याकूब की पत्री को लिखा है, ये वो याकूब है जो प्रभु यीशु मसीह के भाइयों में से एक था। प्रभु यीशु मसीह के और भी स्टेप ब्रदर थे, जो प्रभु यीशु मसीह के बाद मरियम और यूसुफ का विवाह होने के बाद जो आगे भाई और बहन जो उत्पन्न हुए थे, वो जब तक प्रभु यीशु मसीह जिंदा थे उन्होंने विश्वास नहीं किया था, बल्कि वो उसकी हंसी उड़ाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए बाद तीसरे दिन जी उठे, और जी उठने के बाद तब उनको उन्होंने, अरे ये तो सचमुच में परमेश्वर। और तब प्रेरित काम उसके पहले अध्याय में जो हम घटना को देखते हैं, जिसमें 120 लोग इकट्ठा थे, वहां पर ये भाई और बहन भी उपस्थित थे। और उस समय इस याकूब ने विश्वास किया, और तब आगे चल करके याकूब जो था वो यरूशलेम की कलीसिया का सबसे पहला प्राचीन नियुक्त किया गया, एल्डर नियुक्त किया गया, अगुआ नियुक्त किया, वो ये याकूब है। एक याकूब जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य था, 12 शिष्य में एक याकूब, वो प्रेरित काम उसके 12 अध्याय में उसका गला कतर दिया गया था, उसको इस्तेफनुस के बाद सबसे पहला इस्तेफनुस शहीद था, और शिष्यों में सबसे पहले वो याकूब शहीद हुआ। लेकिन ये याकूब प्रभु यीशु मसीह के संबंधियों में था, और तब अब ये कलीसिया का अगुआ है, कलीसिया का प्राचीन है, कलीसिया का एल्डर है, और ये यरूशलेम की कलीसिया को संभाल रहा है। आश्चर्य लगता है, अब यहाँ पर पतरस का नाम नहीं है। पतरस के 12वें अध्याय के बाद हम नाम नहीं देखते उस तरह से, लेकिन एक जगह और आया बीच में पतरस अध्याय में, लेकिन मुख्य अगुआ याकूब है। और याकूब ने कुछ और प्राचीनों बुलाया, 15 अध्याय में भी कुछ प्राचीन इकट्ठे हुए थे, वहां पर एक विषय था जिसके निर्णय लिए गए थे, जिस पर भी हम आएंगे। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, वे प्राचीन उपस्थित थे, उनका अभिवादन कर उसने एक एक करके वे काम बताए जो परमेश्वर की उसकी सेवकाई के द्वारा गलातियों में किए गए थे। अब पौलुस अपने सारे कार्यों का वर्णन कर रहा है, अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कहा जाए कि वो रिपोर्ट दे रहा है, जो कुछ भी उसने सेवा की है, जो कुछ भी रिपोर्ट दे रहा, गलत नहीं है। हमारे साथ बीच में भाई लोग काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, कहीं जाते हैं, कोई भी जाते हैं, हम उसे कहते हैं आप आइए, आपने क्या करा बताइए हम, लेकिन हाँ कैसे दी जाती है वो सोचना है, चाहे छोटा जन हो चाहे बड़ा जन हो, उसमें अगर 10-30 जन हो तो उसके साथ 20-100 नहीं लगा देना, 1-0 और नहीं बढ़ा देना, या कुछ और 2 जनों को सुसमाचार दिया तो 10 नहीं लगा देना, वो गलत है, अतिशयोक्ति नहीं करना, उसको बड़ा चढ़ा देना, जो वास्तविकता है जो परमेश्वर ने किया है आपके साथ और मेरे साथ, जो परमेश्वर करा उसको, और पौलुस यही कर रहा है, और ये लोग सब उसके कार्य को देख करके आनंदित हुए। विरोध हुआ है, विद्रोह हुआ है, कटाई का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो सारे कार्य द्वारा परमेश्वर को महिमा दे रहा है, सारे कार्य। और जब हम सुसमाचार की सेवा में रहते हैं, कलीसिया की सेवा में रहते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ मनुष्य नहीं समझ सकता, संसार के लोग नहीं समझते, आत्मिक लोग भी नहीं समझते, क्या सत्य है क्या गलत है सब लोग नहीं समझते। मेरे 40-45 साल के अनुभव में मैं, प्रभु ने मुझे सिखाया और अभी भी मैं सीखता चला जा रहा हूं, दिन पर दिन हम सीखते चला जा रहा हूं। तो यहां पर लेकिन 20 पद, अब यहां पर एक और समस्या, अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये सुनकर उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और उसे कहा, भाई तू तो देखता है कि यहूदियों में हजारों लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया है, वे सब व्यवस्था के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। इन यहूदियों में से लोगों ने विश्वास किया है यीशु मसीह के सुसमाचार पर। पौलुस बार बार अपने प्रचार में, अपने संदेश में सुसमाचार को प्रचार करता था, वो प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, वो उसे मेरे और आपके लिए क्या किया? वो परमेश्वर की योजना में होकर मनुष्य बनकर आया, मेरे और आपके पाप के लिए वो स्वयं बलिदान किया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्यों उठा, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। 21 पद में और उन्हें तेरे विषय में बताया गया, किसके विषय में? पौलुस के विषय में बताया गया है कि तू गैर यहूदियों के बीच में रहने वाले यहूदियों को ये सिखाता है कि मूसा की शिक्षा को त्याग दो, और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना प्रचलित रीतियों का के अनुसार चलो। तो फिर क्या 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 जाए, वे अवश्य ये सुनेंगे कि तू आया है। अब ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया, अभी तक यहूदी पंथ में थे, व्यवस्था के लिए बहुत अधिक उत्साहित थे, व्यवस्था का पालन कर रहे थे, लेकिन अब इनको संदेश मिल गया है और इन्होंने विश्वास किया है और तेरे बारे में इन्होंने सुना है। अब इन लोगों को मालूम चलेगा कि अरे पौलुस यहाँ पर आया है, तो क्या कहेंगे? अरे पौलुस है, अच्छा यही पौलुस है जो व्यवस्था के बारे में ऐसी ऐसी शिक्षा दे रहा है कि व्यवस्था को मत पालन करो, व्यवस्था को मत करो, खतना मत कराओ। पौलुस ने इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी थी। पौलुस ने व्यवस्था को कभी भी नीचा नहीं दिखाया। हाँ, ये पौलुस प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को कभी नीचा नहीं दिखाया। अगर पौलुस के और यीशु मसीह की शिक्षाओं और उसके जीवनों को तुलना करेंगे बहुत सुंदर रीति से, तो आप कई सारी चीज समानताओं को पाएंगे। तो पौलुस ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि सुषमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह द्वारा उद्धार है, लेकिन उसने ये नहीं कहा। अभी तक एक चीज और जानेंगे, दो बातें। पहली बात, अभी तक ना वहां पर रोमी की पत्री थी, ना वहां पर गलती की पत्री थी, अभी तक वो पत्रियां नहीं थी जो आज मेरे और आपके हाथ में। अब ये लोग वो लोग थे जो विश्वास करके प्रभु में आ रहे थे, धीरे धीरे बढ़ते। अभी इनको बहुत अधिक समझ को प्राप्त करना था, बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करना था, व्यवस्था के बारे में सीखना था, वचन के बारे में सीखना था, यीशु के उद्धार कार्य के बारे में। और तब बाद पौलुस सारी, इसीलिए पौलुस ने सारे इन पत्रियों में लिख करके एक एक चीज को वर्णित किया और एक्सप्लेन किया है, और आज मेरे और आपके लिए वो आशीष का। लेकिन ये लोगों के पास ही कुछ नहीं था, पर इनके अंदर एक जोश था, एक जोश था। और तब वो कह रहा है, याकूब कह रहा है कि देख पौलुस, तू यहां पर आया है, लोगों के अंदर ये भ्रांति उत्पन्न हो रखी है कि तू ऐसा 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 प्रचार करता है। और मेरे प्रियो, ये सच है, आज भी मुझे और आपको सामना करना पड़ता है भ्रांति उत्पन्न कर प्रचार के बारे में। अरे ये सुसमाचार प्रचार, हमें संपन्नता के प्रचार से बच के रहना है, वो प्रचार नहीं करना। सुसमाचार सच्चा खराई के साथ प्रचार करना, लेकिन हमें समझना परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन को हमें बहुत ही चौड़े रीति से देखना है, ये एक बॉक्स में बंद करके हम नहीं ले चल सकते। हम कई बार बहुत सारी चीजों को बॉक्स में बंद कर देते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य को बॉक्स में बंद कर देते हैं। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। आज हमारे बीच में भाई दीपक है, नागपुर में एक बहन है, उनके द्वारा उसने प्रभु के संदेश को सुना कई साल पहले, और तब उसके बाद यहाँ पर उनकी दुकान है और यहाँ पर आकर के उन्होंने संगति में आए और अभी रेगुलर हमारे संगति में, और अभी विश्वास करते। परमेश्वर ने कहाँ से कार्य आरंभ किया, कुछ और भाइयों ने भी उनसे बात की, और कल मैं बहुत देर तक उनसे बात करता रहा। मैंने जाना चाहा कि उनकी बैकग्राउंड क्या, और तब उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी टीचर थी, हम मसीह परिवार में पैदा होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन प्रभु ने हमें बोल दिया और अब हमने इस प्रकार की सेवा शुरू कर, और अब कई लोगों को वो इसके माध्यम के द्वारा वो सुसमाचार पहुंचा रहे हैं, फोन के द्वारा कांटेक्ट करते हैं किसी दूर, लेकिन जिनके बात बांटते हैं किसी न किसी कलीसिया के साथ, जो अच्छी कलीसिया उसके साथ मिला देते हैं। तो हमें समझना है, तो सुसमाचार को या हम पवित्र आत्मा कार्य को बांध कर नहीं सकते, समझ। अब यहां पर ये विषय आ रहा है, ये लोग भ्रमित थे, इन्होंने भ्रम उत्पन्न करा, अरे पौलुस ने ये प्रचार किया है, ऐसा करा। पौलुस ने ऐसा नहीं किया, अभी तक नहीं किया। पौलुस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वर्णित नहीं कर पाया था। तब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे और तेरे विषय में बताया गया है कि तू गैर यहूदियों के बीच में रहने वाले यहूदियों को सिखाता है कि मूसा की शिक्षा को त्याग दो, और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना ही प्रचलित रीतियों के अनुसार चलो। तो फिर क्या किया जाए, वे अवश्य सुनेंगे कि तू यहां पर आए। क्या क्या कैसे उनकी समस्या का समाधान किया जाए, कैसे उनकी समस्या। अब आगे चलकर जो आप देखते हैं वो एक ऐसी घटना घटित होती है जो एक बड़े से प्रश्न को मेरे और आपके सामने ला देती है, और वो घटना यह है कि चार व्यक्ति वहां पर हैं और उन्होंने मन्नत मानी है। क्यों पौलुस उन लोगों के साथ जो जिन्होंने मन्नत मानी थी उनके साथ वो सम्मिलित होता है? क्यों? अब पढ़ेंगे, अरे पौलुस तो विश्वासी हो गया था, विश्वासियों ने बाद अब तो उसने अपना व्यवस्था को छोड़ दिया था, व्यवस्था को त्याग दिया था, लेकिन क्या क्यों ऐसा करा? अगर 23 पद से पढ़ेंगे तो 23 पद में कहता है जो हम तुझसे कहें कह वो कर। याकूब कह रहा है, ये प्राचीन है, एल्डर है, ये लोग कलीसिया को चला रहे हैं, जो तू कह हम कहें क्या कर। हमारे यहाँ चार व्यक्ति हैं जिन्होंने मन्नत मानी। अब ऐसा प्रतीत होता है ये व्यक्ति पहले से, क्योंकि ये व्यवस्था के भाव में बहुत अधिक उत्साहित थे और इन्होंने मन्नत मानी थी, और उस समय गिनती और उसके 6 अध्याय के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा जब एक व्यक्ति मन्नत मानता था कई तरीके उनको पूरा करना पड़ता, और मन्नत मानने के साथ साथ कई बार उनको नाजरीन की मन्नत मानते थे तो अपने बालों को वो करते थे और बाद में कटवाते थे, बाद में करते थे। कई बार कर्म से उनको कुछ कीमत चुकानी पड़ती थी, कई बार कुछ बलिदान चढ़ाने पड़ते थे और ये सब कुछ था। लेकिन वो कह रहा है कि चार व्यक्ति हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें ले जा और उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उन्हें खर्च दे कि वे अपने सिर मुड़ाए। ये लोग वो थे जिन्होंने सुषमाचार पर विश्वास बाद में किया था, मसीह बाद में, लेकिन पहले मन्नत मान चुके। अगर मान चुके हैं तो अगर वो नहीं मानेंगे तो दूसरे यहूदी क्या कहेंगे जो अभी तक विश्वास में नहीं आए, जिनके बीच में रहे। और अगर ये अगर पौलुस उनको डिस्करेज करेगा तो वो बात पौलुस की सही हो जाएगी, वो लोगों की सही हो जाएगी कि पौलुस व्यवस्था के बारे में ऐसा सिखा रहा। पौलुस ने व्यवस्था के बारे में नकारात्मक शिक्षा नहीं दी, लेकिन पौलुस ने बार बार ये सिखाया है कि हम व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जाते, व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता, व्यवस्था के द्वारा हम परमेश्वर के राज में शामिल नहीं होते, व्यवस्था के द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं होती। और इस चीज को उसने बार बार सिखाया, सच्चाई के साथ सिखाया। और हमें समझना है बात, उसने व्यवस्था का तिरस्कार नहीं किया। प्रभु यीशु ने कहा मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया हूं, लोप करने नहीं आया, लेकिन मैं पूरा करने आया हूं। और इसीलिए क्रूस पर रहकर प्रभु यीशु ने पूरा, और इसीलिए उन सारी चीजों को पूरा करता रहा जो लोग चाहते रहे। जरूर, तो हमें कुछ बातों को, कई बार बातों को समझना है। अब यहां पर पौलुस को कह रहा है कि तुझे ऐसा करना। क्यों पौलुस को कहा जा रहा है कि खर्च दे? क्यों कर? ऐसा प्रतीत होता कि पौलुस के पास धंधा, पौलुस अपना व्यवसाय का काम करता, अपना टेंट मेकिंग काम करता। पौलुस आज कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है। मैंने पिछले दौर में जो प्रचार करा था कि ऐसे लोग जो अपने आय को अर्जित करें, अच्छा व्यवसाय उनका हो और कलीसिया की मदद कर सके सुसमाचार पहुंचा जाने के लिए। अब जैसे इस कलीसिया के द्वारा, आपके जैन कलीसिया के द्वारा, हम शायद अगले हफ्ते आपको दिखाएंगे, हम 3 भाइयों को जो गांव में है उनको सुसमाचार प्रचार की सेवा में कलीसिया के आपके जो कुछ भी आपका योगदान है उससे मदद करते हैं और उस सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं सुल्तानपुर में, आजमगढ़ में, 3 जगह पर, और वो कई लोग, तो मैं और आप वहां नहीं जा सकते आपने, लेकिन आपका धन सहयोग कर रहा है ताकि सुसमाचार प्रचार हो सके। और इसीलिए बोने वाला कोई और, सींचने वाला कोई और, काटने वाला कोई और, हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सो इस तरह से हम उस सुसमाचार में के अपने धन के द्वारा उसमें सहयोग करते हैं। ये यहाँ पर पौलुस के बारे में देख रहे हैं। पौलुस कह रहे तो अपना धन खर्चा, संभवतः ये इतने तक धनी नहीं है कि बलिदान की व्यवस्था के लिए अपना पैसा खर्चा कर सके। तो अच्छा हो पौलुस, तो अगर इनके लिए पैसा खर्चा करेगा तो लोग देखेंगे कि पौलुस ने विद्रोह नहीं करा, वो व्यवस्था के खिलाफ नहीं, लेकिन व्यवस्था की जगह वो सच्चाई के साथ बताना चाह रहा है कि उद्धार को तुम प्राप्त कैसे कर सकते हो। मैंने इसीलिए कहा कि अभी तक वो सारी चीज, पूरी चीज एक्सप्लेन नहीं हुई थी। पौलुस ने उसी के बाद सारी चीज को एक्सप्लेन करा, क्या है व्यवस्था, क्या है उद्धार, क्या है या क्षमा, क्या है या विश्वास, क्या है। इसीलिए बाद में रोमियों की पत्री को, गलती की पत्री को, इफिस की पत्री को, उनमें सारी चीजों का विस्तार के साथ देखते हैं। और खासतौर से 2 पत्रे हैं जो रोमियो और गलतियों, जो व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तब ये कहने, तब सब जान लेंगे कि जो बातें तेरे विषय में उन्होंने बताई गई है वे सत्य नहीं है। जो कुछ भी तेरे लिए मिथ्या का भ्रम फैलाया जा रहा है वो सत्य नहीं है। लोग तेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, और मेरे प्रिय सच है। कई बार हमें सत्य को जानने के लिए तैयार रहना है, हम एक बार कान में बात सुनते हैं और अपना इमेज बना लेते हैं। हमें सोचना है, जानना है, खोजना है, मालूम करना है वास्तव क्या है, सच्चाई क्या है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम भी उसी पाप में जा रहे हैं कि असत्य पे विश्वास कर रहे हैं। तो और यहाँ पर ये स्थल जो है आज मेरे और काम के व्यवहार के अनुसार बहुत ही प्रैक्टिकल है। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा, सोच रहा था, विचार कर रहा था और पढ़ रहा था, तो मैंने बहुत सारे कुछ कॉमेंट्रीज को देखा और तब मुझे सीखने को मिला कि सच मुझे परमेश्वर का वचन कितना अधिक भेद से भरा हुआ है। कई बार हम समझ नहीं पाते और तब उसके बाद कहता है कि वो लोग इस बात को जाने सत्य नहीं, यदि तो स्वयं व्यवस्था का पालन करते हुए उसके अनुसार चलता है। जहां तक विश्वासी गैर यहूदियों के संबंध है, ध्यान दीजिए, जहां तक विश्वासी गैर यहूदियों के संबंध है, अन्य जाति संबंध है, हमने उन्हें निर्णय लिख भेजा है। 15 अध्याय में पहले से एक समस्या थी कि जब अन्य जाति लोग प्रभु में आ रहे थे तो ये लोग जो यहूदी प्रभु में से प्रभु में आए थे वो कहते हैं नहीं, अगर कोई अन्य जाति से प्रभु में आया है तो उसको पहले यहूदी बनना है, पहले उसको खतना होना चाहिए, तब उसके बाद वो शायद पॉलस ने कहा। और तब वहां पर मंडली ने या प्राचीनों ने मिलकर मीटिंग कर दी, 15 अध्याय में समझा चुका हूं। और तब उन्होंने कहा नहीं, जो लोग अन्य जाति पृष्ठभूमि से हैं उनके लिए 2-3 बातें स्पष्ट है। वो स्पष्ट क्या है, हमने उन्हें ये निर्णय लिख भेजा है कि मूर्तियों से के आगे बलिदान बलि के वे मांस और लहू से, गला घोटों से और सारी चीजों से और व्यभिचार से बचे। और ये 15 अध्याय में 2 बार आया है, फिर इधर आया है, बार बार उसको रिपीट किया कि अन्य जाति लोग जो प्रभु में आ रहे हैं वो मूर्ति पूजा के सामने अपने उनसे अलग रखे और मूर्ति पूजा के ऊपर जो चढ़ाव चढ़ाए थे उससे अपने आप को अलग रखे, उससे अपने आप को अलग रखे। मुश्किल होता है, कठिन होता है, लेकिन प्रभु धीरे धीरे समझ देता कैसे करना। ये हम जिस समाज में रहे, चारों तरफ हम हमारे पड़ोस में है, हम कैसे उनको मना करेंगे, कैसे अरे वो बुरा मान जाएंगे। हाँ, अगर आप पुरस्कार करेंगे, आप धिक्कारेंगे, अनादर करेंगे तो तलक नहीं, लेकिन अगर प्रेम के साथ अपने विश्वास को, अपने मत को, अपने व्यवहार को प्रकट करेंगे तो धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। हम उस अनुभव में से होकर गए, अभी इतना समय नहीं क्या उनको बताया, मैं अचल में काम किया, मुझे मालूम है कि विश्वकर्मा का दिन का समय आता था क्या होता था, हम अपने आप को बचाते थे या अलग करते थे, सो बहुत सारी चीजें कर स्पष्ट। ये स्पष्ट है, वो कह रहा खास बात ये है कि जो अन्य जाति पृष्ठभूमि से आए हैं उनको अपने आप को इन सारी चीजों से अपना ये अपने से, क्योंकि व्यवस्था किसने दी थी, व्यवस्था परमेश्वर ने दी, व्यवस्था परमेश्वर ने दी और परमेश्वर अपने दी हुई चीज को एकदम से कंडम नहीं कर रहा, लेकिन व्यवस्था के बाद परमेश्वर जोड़ा कि व्यवस्था के द्वारा ठीक है तुम पूरी रीति से उठा नहीं पाओगे। व्यवस्था एक चित्रण था, एक अगर व्यवस्था से पहले आप जाएं तो और पीछे जाएंगे, व्यवस्था भी नहीं आई है, निर्गमन उसके 12वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर छुटकारे के लिए परमेश्वर ने एक लहू का निशान चौखट पर लगाया था। जब उन्होंने छुटकारा पाया, जिनके लहू का निशान है उन्होंने छुटकारा पाया, फिर आगे चल करके फिर यरदन नदी आई, यरदन नदी को पार करना पड़ा और ये दोनों चिन्ह थे जो छुटकारे के चिन्ह थे, लहू का निशान होना जरूरी है, यरदन नदी को पार होना जरूरी है और यरदन में से होके चले, बपतिस्मा यरदन का चिन्ह है, बपतिस्मा यरदन का चिन्ह, यरदन में से होके जाना है, समझ गए, जिसमें परमेश्वर ने बचाया है और शैतान को नाश करा है, शत्रु को नाश करा है, विरोधी को नाश करा है और हमारा सबसे बड़ा शैतान है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम पाप को, पाप के साथ सारी चीजों को नीचे दफन कर देते हैं, वो उस चीज का तो वहां से शुरू हुआ और तब आगे चलकर हम आगे देखते हैं कि किस रीति तब परमेश्वर ने व्यवस्था दी। तो परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम एक चीज को जोड़ता चला, लेकिन अंतिम चीज के अंतिम प्रभु यीशु मसीह है, उसका बलिदान है, उसका जी उठना है, मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना है, यीशु मसीह हमारा उद्धार कर, यीशु हमारा छुटकारा। पर यहां पर पौलुस परिस्थिति के कारण, इस स्थिति के कारण इन बातों को समझाने का प्रयास कर रहा है, तिरस्कार नहीं। अब आप कहेंगे ठीक है पौलुस ने कहा तो मुझे भी करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया उस समय परमेश्वर का वचन इतने अधिक समझाया नहीं जा चुका था, व्याख्या नहीं दी गई थी। अब हमें बताया गया कि और कितने साल हो गए, 2000 साल हो गए हैं, जो ज्यादा साल, कि अब हम जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है, आज किन बातों की शिक्षा दे रहा है। तो हम अब वर्तमान में उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, अरे उन्होंने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना, नहीं नहीं नहीं, आज उसके बाद पौलुस ने क्या सिखाया है, परमेश्वर के आत्मा ने क्या सिखाया है, वचन ने क्या शिक्षा दी है, उसके अनुसार हमको करना है। कई बार हमारा दिमाग ऐसे चलता है, हमारे बाइबल में लिखा ठीक है हम एग्जाम से पकड़ लें, नहीं, उस समय की स्थिति को देखिए, हमेशा इस बात को देखिए, तब और अब, तब और अब, तब क्या था अब क्या है। अब यह है कि अब हमें पूरी से प्रभु पर निर्भर होना है, परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना है, परमेश्वर की क्रियाओं पर निर्भर होना है, उन पर निर्भर होना है और कोई चीज हमारे नहीं। और तब यहां पर तब उसके बाद 26 पद है, तब पौलुस उन मनुष्य को ले गया और दूसरे दिन उनके साथ आपको शुद्ध किया करके मंदिर में गया और वहां उसने सूचित किया कि शुद्ध होने के दिन कब पूरे होंगे, अर्थात हम में से प्रत्येक के लिए कब बलिदान चढ़ाया जाएगा। सो उनके साथ, वो उनके साथ है, उन चार जनों के साथ उनके उनकी मदद कर रहा है और उनके साथ होकर के वो अपने आप को, लेकिन पौलुस किसी भी रीति से व्यवस्था की उन सारी चीजों को करने द्वारा अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा रहा है, या उद्धार की बात तो नहीं कर रहा है, या छुटकारे की बात तो नहीं कर रहा है, क्षमा की बात नहीं कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो बहुत ही उत्साहित थे लेकिन भ्रम फैला हुआ था, उस भ्रम को दूर करने के लिए पौलुस कहना चाह रहा है, नहीं भाई मुझ पर विश्वास करो, मैंने व्यवस्था का अनादर नहीं किया है, मैंने व्यवस्था को लज्जित नहीं किया है, मैंने व्यवस्था को पैरों तले नहीं कुचला है, मैंने व्यवस्था के विरोध में कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था के द्वारा छुटकारा नहीं है, व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है, व्यवस्था द्वारा पापों की क्षमा नहीं है, व्यवस्था के द्वारा कोई भी हमारा कोई जीवन नहीं मिल सकता, लेकिन जीवन चाहिए, उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये वो समझाना चाहते और इसलिए उस बात को तब से लेकर आगे चल करके हम पौलुस को देखते हैं कुछ एक और चेतावनी का सामना करें। केवल कुछ पद में जाऊंगा फिर मैं छोड़ दूंगा। 27 पद से जब वे 7 दिन पूर्ण होने के बाद एशिया यहूदियों के मंदिर में देखकर सारी भीड़ को भड़का दिया और पौलुस को पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, हे इसराइल, इसराइलियों हमारी सहायता करो, यही वो मनुष्य है जो हर जगह सब लोगों को, हमारी प्रजा और व्यवस्था और इस स्थान के विरोध में प्रचार करता है, यहां तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर रहा है। अब क्या हो रहा था, मंदिर जब था तो मंदिर में यहूदियों के अलावा सब लोग नहीं जा सकते, अगर कुछ लोगों को जाना था तो जो अन्य जाति लोग थे प्रभु बनाते थे उनके लिए अलग स्थान था, वो सब जगह केवल यहूदी लोगों के लिए कुछ स्थान बनाया था, बाकी हर एक जन उस स्थान पर नहीं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये यूनानी, अब यूनानी लोग बहुत सारे उस समय थे जिन्होंने यहूदी मत को स्वीकार किया था, यहूदी भाषा को स्वीकार किया था, यहूदियों के अनुसार बहुत से चल थे यूनानी, लेकिन फिर भी वो यहूदी मत को मान करके चल रहे थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये लोग, ये क्या करा इन लोगों, अब ये लोग और कौन थे, लेकिन इसमें केवल यूनानी वो लोग थे जो उनके साथ आ रहे थे, उन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना था, सुसमाचार को सुना था, पौलुस सुसमाचार, और पौलुस बार 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 मंदिर में जाकर के सुसमाचार प्रचार किया करता था, जब भी उसको मौका मिलता वो सुसमाचार प्रचार, विरोध का सामना किया, कठिनाई का सामना करा, क्योंकि उसका ड्रीम था, उसका स्वप्न था, उसका समर्पण था, उसकी लालसा थी, किसी भी रीति से चाहे मैं कहीं हूं, चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, लेकिन मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकूं, ये उसका सब था। केवल अपने काम धंधे में व्यस्त नहीं रहता था, उसके हृदय की लालसा, जिसके साथ एचएल में मैं सर्विस करता था, मेरे साथ एक भाई थे प्रभु में सो गए, आगरा से थे, उनकी बहुत बड़ी शराब की बिजनेस था, बहुत था, जो अग्नि पूजा करते हैं पास से, उस प्रभूमि से प्रभु आते मिस्टर सीताम, बीबी सीताम का नाम था, उनका बेटा आज अलाहाबाद में सेमिनरी में, और मैं कई बार उनके साथ कई जगह गया, पहले तो कहानी लंबी है, लेकिन जब मैं उनके साथ जाता मैं एक चीज बहुत देखता था, उनको किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, वो अपना परिचय देते, मेरा नाम डीबी सेक्ता है, गुजराती बोलते थे, मेरा नाम डीबी सेक्ता है, मैं जन्म से तो गुजराती हूँ लेकिन मैंने यीशु मसीह को पाया, उनका पहला इंट्रोडक्शन अपने आप को, मैंने यीशु मसीह को जाना, मैं यीशु मसीह, चाहे किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, और मैंने उससे बहुत स्वीकार मुझे चाहेंगे नहीं भी, किसी भी रीति से उनको चिंता नहीं, काम होगा या नहीं होगा, मना कर देगा अधिकारी, क्या कहेगा भगा दे, कहते उनका यह था कि हमें उनको मानना चाहिए कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बताया, क्या मेरे और आपकी शादी, हम जाते हैं तो कहाँ जाते, कैसे, क्या मौका ढूंढते कि हम किसी भी रीति से प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को एक बार हम परमेश्वर के वचन को पाठ सकते प्यार से, अब हड़का के डांट कर नहीं, लेकिन मौके दे दिए, दुआ करिए, प्रार्थना करिए। कहीं ना कहीं किसी से। और ये, और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, वो ऐसा है, ये मनुष्य ऐसा है, इस रीति करा है। और वो क्या कह रहे हैं कि इस रीति से लाता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने त्रिपुमस नाम इफिसी को उसके साथ नगर में देखा था, और वो समझा कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। सारा नगर भड़क उठा और सब लोग दौड़ करके इकट्ठे हो गए, और वे पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और द्वार बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये पौलुस के साथ है, लेकिन वो पौलुस के साथ नहीं, इस व्यक्ति के साथ कुछ घटना। इसने अपने आप को झूठा नबी ठहराया हुआ था, झूठा नबी। और झूठा नबी ठहरा के अगर आप क्या नाम से कॉमेंट्री में जाएंगे इस एक्सप्लेनेशन को देखने के, तो जो बाइबल के विद्वान है उसको इस प्रकार से बताते हैं कि ये व्यक्ति, इसने अपने आप को धीरे धीरे करके करीब 30,000 इसके अनुयायी हो गए थे, फॉलोवर हो गए, और तब उसने करके इस पर करके कुछ लोगों को ऐसे जंगल में ले गया और करीब 4,000 लोगों को उसने नाश कर दिया। अब बाद में जब लोगों को मान चला तो भी लापता हो, तो लोग उसको ये सोचे थे कि अरे कोई फिर से कोई आ गया है और आके अब हमारे मंदिर को ऐसा कर देगा या हमारे लोगों को ऐसा कर देगा। सो ये भ्रमें जो फैली हुई थी उस समय, उसका पौलुस को बहुत अधिक सामना करना पड़ा, अपने कलीसिया के भवन में सामना करना पड़ा, लोगों के बीच में सामना करना पड़ा, कई जगह सामना। और प्रेरित काम की पुस्तक उस सारी चीजों का एक्सप्लेन करती जाती है, उसके कदमों को एक्सप्लेन कर जाती है, कैसे परमेश्वर का आत्मा उसकी मदद कर रहा है। क्योंकि एक बात उसके अंदर, वो सुसमाचार को जानता था, वो सुसमाचार को मानता था, उसका अनुसरण करता था, और सुसमाचार के लिए उसका जीवन समर्पित था। उससे सुसमाचार को जाना था, पहली बात क्या आपने सुसमाचार को जाना। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत पापों से क्षमा का करा, उद्धार करता नहीं जाना, और वो नहीं जाना यीशु मसीह क्यों आपके लिए आया, आप अधूरे हैं। सुसमाचार को जाना ना कर जाता, लेकिन पूरे हृदय से मानता था, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो। ये सच है कि हम पौलुस के जूते के बंद भी खोलने के लायक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर वो लालसा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। और तब उसके बाद उसका जीवन सुसमाचार के लिए जुड़वा था मेरे को, और ये था। लेकिन लोग उसको नहीं समझ पा रहे, तो हम यहीं पर रुकना चाहेंगे। अब लोग उसको सता रहे, लेकिन प्रभु ने उसको छुड़ाया, पहला छुटकारा उसको यहीं पर मिला है कि उसको किस प्रकार से उसको बचाया गया। लेकिन सारा नगर बढ़ के और सब लोग दौड़ कर इकट्ठे हो गए, और एक पौलुस को पकड़ कर मंदिर से बाहर घसीट लाया और तुरंत द्वार बंद कर दिए गए, ताकि लोग उस पर आक्रमण ना कर सके। मंदिर में था तो लोग उस पर आक्रमण कर देते, उसकी हत्या कर देते, मार देते। आज भी मॉब को हम देखते हैं कैसे मॉब बढ़ जाता है, कोई भी चीज के लिए, जरा उनको पूरी बात नहीं मालूम, लेकिन जरा से कुछ बात हो भीड़ लग जाती है, और भीड़ लग के कैसे उनके पीछे किसके पीछे पड़ जाते। पर परमेश्वर ने इसको बचाया। तो पौलुस एक ऐसा सेवक था जिसने अपने जीवन में, अपने जीवन काल पूरी से अपने आप को सेवा के लिए समर्पित किया था। पौलुस पर दोष आरोपण लगाया जा रहा है, आगे चल के हम देखेंगे। पौलुस दोष के कारण शताब्दी को सहा है, लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने बचा दिया, पौलुस को परमेश्वर ने बचा दिया। सो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे, रुकना चाहेंगे। लेकिन तीन बातें जो मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, ध्यान दीजिए, परमेश्वर लोगों को उपयोग करता है लोगों को बचाने के लिए, ये परमेश्वर का सिद्धांत। और अगर मैं और आप उसकी उस योजना में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, तो जरूर किसी ना किसी को मेरे और आपके द्वारा जरूर बचाएगा मेरे और आपके द्वारा, क्योंकि वो मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। वो आकाश से आसमान से किसी व्यक्ति को नहीं भेजता। किसी प्रभु के सेवक ने कहा, परमेश्वर के हाथ मेरे और आपके हाथ है, परमेश्वर के पांव मेरे और आपके पांव, परमेश्वर का मुंह मेरा और आपका मुंह। ये पांव जो परमेश्वर के जहां चाहे सुसमाचार पहुंचा सकते, ये हाथ जिसकी सेवा करना चाहे सेवा कर सकते, ये मुंह जिसको साक्षी देना चाहे, जिसके लिए प्रार्थना करना चाहे, जिसको यीशु के बारे में बताना चाहे, वो कर सकते हैं, वो परमेश्वर है मुझे रखते। सो पहली बात, परमेश्वर अपने काम को लोगों के द्वारा करता है। दूसरी बात, प्रत्येक विश्वासी का प्रथम कर्तव्य है कि वो सुसमाचार को जाने, सुसमाचार को माने और सुसमाचार को दूसरे तक पहुंचाए, परमेश्वर सहायता करे। और तीसरी बात, सुसमाचार वो एक जल की धारा है, बहने वाली नदी के सामने जल की धारा, जो अपने लिए अपने रास्ते को ढूंढ लेती, जैसे नदी अपने रास्ते को बना लेती चली आती है, सुसमाचार भी अपने रास्ते को बनाता चला जाता है। कितने द्वार बंद हुए लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ता चला गया, वो नदी बहती गई और बहती चली जाएगी। सुसमाचार एक वो उत्तम नदी है, वो जल किनारा है जो अपने लिए स्वयं अपने रास्ते बनाते चल रहा है। कितनी सुंदर बात है, काश प्रभु मेरे रास्ते साथ आता कि हम पौलुस के समान उस सुसमाचार के लिए लाल हो सके। आज हम